मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 8 अप्रैल 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं रवि प्रताप सिंह, आप बचौरा जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं, उत्कर्ष कश्यप फरीदपुर उत्तर प्रदेश से, जयप्रकाश अदलहाट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, विकास खंगार टोंक राजस्थान से, मौसम कुमार अयोध्या उत्तर प्रदेश से और शिवांगी पवार आपका गांव है खानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखंड से। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और मित्रों अब सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा उन सभी स्टूडेंट को जिन्होंने अंततः 2018 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त की है और साथ ही साथ जो सफलता प्राप्त करने से थोड़े से चूक गए हैं उनसे मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिन्होंने सफलताएं पाई हैं अभी उनके बारे में बहुत सी बातें आपको पढ़ने को और सुनने को मिलेंगी, तो आप पढ़ेंगे और सुनेंगे कि किस तरीके से वे भी कभी न कभी असफल हुए थे। हाँ, पहले ही अटेम्प्ट में सफल होने वाले भी स्टूडेंट होते हैं लेकिन उनकी संख्या बेहद कम होती है। सच पूछिए तो यदि आपको अभी सफलता मिली है तो आपको इसे इस रूप में लेना चाहिए कि आप सफलता की जो मंजिल है उस दिशा में एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ चुके हैं, वो सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तो मित्रों आज मुख्य विषय के रूप में मैं जो आईएएस का भी रिजल्ट आया है उसी को आधार बनाकर आपसे कुछ बातें करूंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी दूसरे विषयों पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। कल के न्यूज में अक्सर आपने ब्रेग्जिट के बारे में सुना है और इससे पहले भी आप सुनते रहे हैं। ब्रेग्जिट का मामला थोड़ा सा उलझ गया है तो मैं थोड़ा सा उसे स्पष्ट करने की दृष्टि से आपको उसकी बैकग्राउंड बता देता हूं। दोस्तों ब्रेग्जिट का मतलब है जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोप के पूरे देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया है, उसमें से जो ब्रिटेन है ब्रेग्जिट ब्रिटेन उस यूरोपियन यूनियन समुदाय से एग्जिट करना चाह रहा है, बाहर निकलना चाह रहा है। तो ब्रिटेन और एग्जिट इन दोनों शब्दों को मिलाकर के ब्रेग्जिट शब्द बना दिया गया है, यानी कि यूरोपियन यूनियन ईयू से ब्रिटेन बाहर होना चाह रहा है। दरअसल हुआ यह था कि सन 2013 में उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार जीत गई, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनी, तो वे बकायदे ब्रेग्जिट के लिए जनमत कराएंगे। तो ब्रिटेन में फिर 2016 में एक जनमत कराया गया और उसमें उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हैं या नहीं। तो जब जनमत कराया गया, वोटिंग कराई गई, तो 48.1% लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हम यूनियन में बने रहना चाहते हैं, लेकिन 51.9% ने कहा कि नहीं हम बने रहना नहीं चाहते, हम यूरोपियन यूनियन से बाहर आना चाहते हैं। तो दोस्तों वहां से ब्रेग्जिट की शुरुआत हुई 2016 से। ब्रिटेन ने ऐसा क्यों किया, वहां के लोगों ने ऐसा क्या महसूस किया कि उन्हें लगा कि उन्हें यूनियन में बने रहना नहीं चाहिए, उसके 2-3 सबसे प्रमुख कारण बताए जाते हैं। पहला तो यह है कि देखिए ब्रिटेन शुरू से ही आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि इतना शक्तिशाली राष्ट्र रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो महसूस करने लगा था कि ब्रेग्जिट में अब उसकी ज्यादा अहमियत नहीं रह गई है, बल्कि उसमें तो फ्रांस और जर्मनी जैसे देश ज्यादा प्रभावशाली हो रहे हैं, लीडरशिप उनके हाथ में है। तो ब्रिटेन के लोगों में यह छटपटाहट थी कि नहीं हम अपने उस प्राचीन वैभव को फिर से प्राप्त करें। लेकिन उससे भी बड़ी जो दूसरी बात थी वो ये थी कि चूंकि आप यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं तो यूरोपियन यूनियन के नियम कानून लागू हो रहे हैं, तो पूरे के पूरे ब्रिटेन में बाहर से आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब यूरोप के देश के जो लोग थे वो ब्रिटेन में बेसिकली रोजगार के लिए आने लगे, यानी कि वहां प्रवासियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जब ये आने लगे तो रोजगार की समस्या पैदा होने लगी और ब्रिटेन के लोगों को यह भी कुछ एहसास हुआ कि इसका दुष्प्रभाव उनकी अपनी संस्कृति पर भी पड़ रहा है। तो उन्होंने छोटा सोचा कि नहीं नहीं हमें अब यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहिए। अब अलग होना चाहिए तो दोस्तों उसकी एक प्रक्रिया है, अभी फिलहाल वही प्रक्रिया चल रही है और कल न्यूज में आपने यही सुना है कि किस तरह से वहां की अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं थेरेसा मे, वे अब जो अपोजिशन के लीडर हैं उन सब से मिलकर के एक रास्ता तलाश करना चाह रही हैं ताकि बहुत अच्छे तरीके से यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो सके। तो ये थोड़ा सी मैंने आपको बैकग्राउंड बताई है और मुझे लगा कि इसे बताया जाना चाहिए। मित्रों, इससे पहले आपने एक न्यूज सुनी होगी गोलान हाइट को लेकर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं गोलान पहाड़ी, गोलान की पहाड़ी। 3-4 साल पहले प्री एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये गोलान हाइट क्या है। इसराइल का नाम आप लोग सुनते हैं अक्सर, फिलिस्तीनी का नाम भी आप लोग सुनते हैं, फिलिस्तीन। इसराइल और फिलिस्तीनी आप ये कह लीजिए कि सांप और नेवले का मामला है, दोनों में काफी लड़ाई झगड़े और दुश्मनी चलती रहती है। ये जो गोलान हाइट है ये बेसिकली इसराइल और सीरिया की सीमा क्षेत्र में स्थित है। लगभग लगभग 1800 स्क्वायर किलोमीटर का ये पहाड़ी एरिया है और इसको ये मामला अब बाकायदे संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया है। गोलान हाइट्स को लेकर के इसराइल और फिलिस्तीन में लगातार संघर्ष चलता रहा है। फिलिस्तीन इस पर अधिकार जमाना चाहता है, इसराइल इस पर अधिकार जमाना चाहता है, लेकिन फिलहाल इसराइल का इस पर अधिकार है। आप नक्शे में जाकर के देखेंगे तो आपको बॉर्डर पर यह पहाड़ी दिखाई दे जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी कुछ समय पहले ही इस पहाड़ी पर इसराइल के अधिकार को मान्यता दे दी। अब आप देखिए कि मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में है, अमेरिका उसको मान्यता दे रहा है। तो जब अमेरिका ने मान्यता दे दी कि गोलान हाइट्स पर इसराइल का अधिकार होगा, तो इसे यूरोपियन यूनियन ने स्वीकार नहीं किया है और दुनिया के दूसरे भी बहुत से देशों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सीरिया चीज को स्वीकार नहीं करेगा, दूसरे देश भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और इसराइल इस पहाड़ी पर इसलिए अधिकार करना चाहता है क्योंकि एक तो इसके रणनीतिक महत्व का है, अगर इस पर इसका पूरी तरह से अधिकार हो गया तो इसराइल बहुत सुरक्षित राष्ट्र बन जाएगा। प्राकृतिक गैस के वहां बहुत भंडार है, खनिज के भी बहुत भंडार हैं और इन सब का उपयोग बट नेचुरल है कि इसराइल अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए कर सकता है। इसीलिए लगातार इसराइल भी इस पर अपना अधिकार जमाए हुए है और चूंकि अमेरिका ने इसको मान्यता दे दी है तो अब यह समझा जा रहा है कि इस क्षेत्र में इसको लेकर के अब एक नए संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। चूंकि ये दोनों टॉपिक ब्रेग्जिट और गोलान हाइट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे तो मुझे लगा कि इनकी बेसिक्स आपको क्लियर कर देने चाहिए। फ्रेंड्स, आज के करंट कंटेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डाला गया है विवेक देव राय जी का और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वो आर्टिकल लिखा है। वह देश में 2 टाइम जोन का होना उचित है। आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट, इस हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उत्तर पूर्वी भारत के, वो अलग से टाइम जोन की मांग कर रहे हैं। अगर हम पूर्व को ले लें और इधर पश्चिम को ले लें और दोनों के बीच में आप देखेंगे कि लगभग 30 डिग्री देशांतर का फर्क है। आपको यह भी मालूम होगा, ज्योग्राफी के तहत आपने पढ़ा होगा कि 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट को शो करता है। तो 30 डिग्री का मतलब है कि 30 में आप 4 का गुणा कर दीजिए तो 120 मिनट, यानी कि दो घंटे का फर्क हो जाता है। तो उत्तर पूर्व भारत के लोग काफी समय से अपने लिए अलग टाइम जोन की मांग कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने अपने तार्किक रूप से समझाने की कोशिश की है कि यदि ऐसा किया जाता है तो यह बेहतर होगा। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वह है अभी जो आईएएस के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप देख रहे हैं कि जो सक्सेस हुए हैं जो स्टूडेंट, उनके बारे में ढेर सारी बातें आपको पढ़ने और सुनने को मिल रही है। सच क्या है, इनमें से आप अपने लिए किस सच को सच मानेंगे, कैसे अपने लिए आप किन बिंदुओं को लेकर के योजना बनाएंगे, बस इन्हीं तथ्यों पर मैं आपसे थोड़ी सी बातें करने जा रहा हूं। मित्रों, तो सच पूछिए तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए अगर आप किसी दूसरे को फॉलो करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि जो 5वें नंबर पर जो अभी आई है सृष्टि, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो उन्होंने कोचिंग वगैरह कोई खास नहीं ली है, घर में रह करके उन्होंने तैयारी की, राइट। इसके बाद एक और स्टूडेंट का आ रहा है जो शायद 90 के आसपास जिनकी रैंक है, जिनके पिता इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, इन्होंने बकायदे दिल्ली में कोचिंग ली है। दिल्ली में कोचिंग लेने के लिए इनके पिता ने अपने अपना मकान बेच दिया और 1.5 लाख रुपए फीस देकर के उन्होंने वहां कोचिंग की। अब आप देखिए कि दो अलग अलग सत्य आपके सामने हैं। एक वह स्टूडेंट है जिसने कोचिंग नहीं ली और 5th रैंक हासिल की, दूसरा वह स्टूडेंट है जिन्होंने कोचिंग ली और रैंक हासिल की, यानी कि सफलता की सूची में अपना स्थान बना लिया। अब सवाल यह है कि इन दोनों को सुनने के बाद आप अपने बारे में क्या फैसला करेंगे कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या कोचिंग नहीं करनी चाहिए, आपको किसी बड़े शहर में जाना चाहिए या बड़े शहर में नहीं जाना चाहिए। ये जो निर्णय होते हैं, देखिए आप सुनते रहिए, सुनने से आपको बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं, आपको तथ्यों की जानकारी मिलती है और उससे नो डाउट कि योजना बनाने में मदद भी मिलती है। लेकिन मेरी जो सलाह है वह यह है कि उनके सच को आप पूरी तरह से अपना सच मत मान लीजिए, आप अपने सच की तलाश कीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के स्टूडेंट लगातार परेशान होते रहते हैं। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट देखिए कि जो टॉपर हैं उन्होंने मैथ गणित विषय लिया हुआ था, सेकेंड रैंक ने कुछ विषय लिया है, किसी ने समाजशास्त्र लिया है, किसी ने एंथ्रोपोलॉजी लिया है, किसी ने ज्योग्राफी लिया है। ये शुरू के 5-6 मैं आपको जो टॉपर्स हैं उनके सब्जेक्ट बता रहा हूं। इसके आधार पर अब आप अपने लिए किस सब्जेक्ट का चयन करेंगे? तो मेरे कहने का मतलब कुल मिलाकर फ्रेंड्स ये है कि आप इन सबको सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, सामान्य तरीके से नहीं, और सुनने के बाद आप देखिए कि आपके लिए कौन सा सर्वाधिक उचित होगा। नो डाउट कि आप इन्हें सुनिए, इनसे इनको सुनने के बाद आपको बहुत सी पगडंडियां उभरती हुई दिखाई देंगी, उनका विश्लेषण कीजिए और उन पगडंडियों को मिलाकर अपने लिए एक राजमार्ग तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। एक सूचना मुझे आपको देनी है कि एकेडमी ने अपनी वेबसाइट पर मॉक टेस्ट के 2 सेट डाल दिए हैं, 50-50 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव टाइप के सेट्स से, 3 सेट्स और डाले जाएंगे, कुल मिलाकर 5 सेट्स आपको मॉक टेस्ट के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों अंत में ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ के नाम हैं आनंद कुमार, अलका चंदर, हित अनंत, राकेश कुमार, सुभाष ठाकुर, अनीता चौहान और राहुल सिंह राठौर। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।